चलिए अब इतनी बातों को आगे लेकर चलिए, ताकि थोड़ा सा आपका जहन क्लियर हुआ है तो इसके अगली चीज आपको क्या समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने सूरत मायदा के शुरू में ही जो बात की है वो कैसे है। मैं थोड़ी सी सूरत शुरू करके आपको फिर एक और हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मायदा तरतीब के एतबार से 5वें नंबर की सूरह है और इस बारे में इसकी 82 आयात हम पढ़ेंगे, यानी अब एंड तक सूरत मायदा ही चलेगी। मायदा कहते हैं दस्तरखान को, टेबल क्लॉथ कह लीजिए चलिए। और असल में अल्लाह ताला ने दो किस्म के रिस्क उतारे हैं दुनिया में, एक हमारा फूड फॉर बॉडी, वो ज़मीन का है दस्तरखान, इसमें अल्लाह ताला ने जो दिया वो सूरत अब्बस और बहुत सारी सूरतों में उस पर गौर व फिक्र भी कराया, सूरत गाशिया में भी कराया। लेकिन एक रिस्क अल्लाह ने रब्बानी रिस्क के तौर पे हमारी रूह के लिए उतारा है, वो कुरान में। इस सूरत को सूरत मायदा क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि इसके आखिर में बनी इसराइल में से वो लोग जो हज़रत ईसा के दौर में उनके सामने थे उनका एक मुतालबा है, तो उसकी तरफ इशारा है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 1 है, आयत 1 से 5। टॉपिक है मुआहिदों की पासदारी करो, यानी फुलफिल योर कमिटमेंट्स। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद। और मज़े की बात देखिए कि सूरत के शुरू में ईमान वालों को रब की पुकार, पहली मोहब्बत भरी पुकार इस पारे की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद। ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला बंदे को बड़ा ही मुहज़्ज़ब देखना चाहते हैं। तर्जमा सुनते हैं। ऐ ईमान वालो, अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी छुपाए हलाल किए गए हैं सिवाय इनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे। अभी आ रहे हैं आगे, आए 3 में उसकी तरफ इशारा है। मगर हालत हराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहे वो हुक्म करता है। फिर दोबारा दूसरी पुकार, देखिए इस सूरत की खूबी, मुस्तकिल दूसरी आयत आ गई जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शाइरल्लाही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला के शायर यानी रिचुअल्स लिख सकते हैं, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती न करो, और ना अदब वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और ना इन लोगों की जो बैतुल्ला के कसद से अपने रब ताला के फजल और इसकी रजा जोई की नियत से जा रहे हो। मुराद है हज या उम्रे के लिए जाने वाले लोग। हाँ, जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर इमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म और ज्यादती में मदद न करो। अल्लाह तला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तला सख्त सजा देने वाला है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी जर्ब से मर गया हो, और जो ऊंची जगह से गिर कर मरा हो, और जो किसी के सींग मारने से मरा हो, और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन इसे तुम ज़िबा कर डालो तो हराम नहीं, और जो आस्तानों पर ज़िबा किया गया हो, और ये भी कि कुरे के तीरों के जरिए फालगिरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं। आज कुफार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए। इसको नोट कीजिएगा, अल्योम का लफ्ज़ इस सूरत में बहुत आएगा, अल्योम अकमलतु की तरह, यहाँ अल्योम आज के दिन। ये कौन सा दिन है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे? नहीं, अल्योम से मुराद वो दिन था जिस दिन हज्जतुल विदा का मौका भी था और इस्लाम अपने अरूज पे था। आज के दौर में अल्योम वो दिन है जिस दिन इंशाल्लाह दुनिया में इस्लाम गालिब आएगा, असल सूरत में आएगा। यकीन करें, अपने दिल में ना दर्द महसूस किया करें। मुझे ऐसे लगता है जब मैं महसूस करती हूँ, स्पेशली मुस्लिम हिस्ट्री को पढ़ती हूँ या वाक़यात देखती हूँ माजी के, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस्लाम की बजाय कह ले मुसलमान, यानी मुसलमान एक सोया हुआ शेर है, आज इस वक्त सोया हुआ है, इसको ज़रा से उठाने की देर है। जिस दिन मुसलमान को ये पता चल गया ना कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखेंगे कि दुनिया परेशान हो जाएगी। किसी ने एक पिक्चर शेयर की, और है दुनिया के किसी बड़े मारूफ जगह पे, कि एक शख्स सजदे में झुका हुआ है नीचे, और उसके ऊपर एक शख्स फिर बैठा हुआ है, और उसके ऊपर एक कोई खड़ा है, और जो खड़ा है वो यहूदी है, जो बैठा है बीच में वो नसरानी है, और एक नीचे जो है वो मुसलमान है। तो लोग उसको एक बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं कि देखो जुदाइज्म इस सबसे अबव है, फिर क्रिश्चियनिटी, और मुसलमान दबे हुए हैं। तो किसी ने उसके साथ एक तस्वीर के कमेंट लिख कर दिया था कि डरो उस दिन से जिस दिन ये दबा हुआ मुसलमान खड़ा हो गया तो तुम दोनों ने मुंह के बल गिरते। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है, सोए हुए हम, हमें पता लग जाए हम क्या थे तो गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे फिर उसी पे आता है। हमने अपने इस्लाम को ना पढ़ा ना समझा ना सीखा, बच्चों को सिखाया भी तो नूरानी कायदा सिखाया, नाजरा सिखाया, हा खा का फर्क दिखाया और बस कहा जल्दी से कुरान पूरा करा के इनकी रस्म करके फारिग कर दो। हमारे बच्चों को भी कुरान नहीं पता, तो जरूरत इस बात की कि हम इस कुरान को समझें और इसके ऊपर करें गौरव फिक्र। आप देख रहे हैं कि इतनी तफसील से तो अल्लाह ने नमाज का तरीका नहीं बताया जितनी तरतीब से हलाल और हराम का फर्क बताया, क्योंकि पेट में जो जाएगा वही हमारे अमाल से दिखेगा। फरमाया जो आस्तानों पर जिबा किया क्या हो, और ये भी कि कुरे के तीरों के जरिए फालगिरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह है। आज कुफार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए, खबरदार तुम इनसे न डरना और मुझसे डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ इसका मेलान न हो, तो यकीनन अल्लाह तआला माफ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। आपसे दरियाफ्त करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है, आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं और जिनका शिकार खेलने वाले जानवर और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधा रखा है यानी टेम किया हुआ है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है, बस जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखे हैं तो इससे खा लो और इस पर अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। कुल पाकीज़ा चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गई और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा इनके लिए हलाल है, और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए इनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं। जबकि तुम इनके मेहर अदा करो इस तरह के तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि एलानिया जिना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकरी ने ईमान के आमाल जाया और इकारत हैं और आखिरत में वो हारने वालों में से है। क्या खूबसूरत आयतें गुजर गई, हर आयत अपनी जगह एक खजाना है। पहली बात तो देखे कि इसमें तीन आयात का तस्करा ईमान के साथ गुजरा। पहली ही आयत, आयत नंबर 1, इसको समझिएगा जरा सा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल्उक़ूद। इस पे एक जुमला लिखिए, मोमिन की जिंदगी एक पाबंद जिंदगी है। मोमिन अहद की रस्सी में अल्लाह के साथ बंधा होता है। ये जो आप अकीदे का लफ्ज़ बोलते हैं ना, वो भी इसी के साथ आता है। आप और मैं आज़ाद नहीं है, शुतर बेमुहार नहीं है, जैसा चाहो वैसा करो, जो चाहो जियो खाओ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सब बेकार के स्लोगन है। हम अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह ताला के साथ अहद की एक रस्सी में बंध जाते हैं और फिर सारी जिंदगी दुआ कीजिए उसी से बंधे और इसी पे मौत आए। पिछली सूरत में आपने आयत सुनी थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, अगर आपको याद है आयत तो आप उसको मजेद में ले, क्या ईमान वालों ईमान लाओ, ये ऐसी है जैसे है मुसलमानों मुसलमान बनो। ये बातें हमने सूरत निसा की आयत 136 में पढ़ी थी। ये सूरत या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ जो शुरू हुई हमारे पास, ये हमें बताती है कि मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए सूरत मायदा के अहकामात पे अमल करना होगा, और जितना ज्यादा आप कुरान के ऊपर अमल करते जाएंगे आप मुतमईन होंगे। देखिए, आपने कभी भी जिंदगी में किसी से कोई वादा किया हो पूरा ना करें तो अगला बंदा तो परेशान होगा, क्या आप खुश होते हैं? आप भी परेशान होते हैं। कमिटमेंट की हो निभा ना सके, जिम्मेदारी ली हो पूरी ना कर सके, कुछ कहा करूंगी ना कर सके तो परेशान है ना, इसका नाम है डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड, सेल्फ किलिंग, ये हो गया वो हो गया। इस्लाम आपको मुतमईन चाहता है। आप शोहर बीवी के नाते से देखिए, दोनों खुश होंगे तो दोनों ही खुश होंगे। एक गुस्सा करेगा अगर दूसरे को दुख हो, तो गुस्सा करने वाले को भी जाके अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होगा कि मैं क्यों इतना बोला। बीवी भी कहती है कि मैं ही ना बोलती आगे से, मैंने क्यों फौरन फौरन तुर्की बतुर्की जवाब दिया। तो रिश्ता दो हाथों से चलता है। यहाँ एक जुमला लिखिए, ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ बीच में से निकल जाए तो ताली नहीं बजती। ये तो किसी ने किसी भी तरह बात की थी ना, लेकिन मोमिन की जिंदगी में अल्लाह ने पाबंदियां रखी हैं। वो इस दुनिया में बाहर आजाद है, जो चाहे करे। इसके बावजूद वो अल्लाह की बड़ाई का इकरार खुद करता है। किसी ने एक बड़ी प्यारी बात की कि किसी को बांध के क्यों कहें कि सुनो, वो खुद सुनेंगे, उनके दिल बांधे जाते हैं। वो यमामा और सुमामा वाला जो किस्सा आपने सुना होगा ना, यमामा का हाकिम सुमामा 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रोजो शब देख गया था, और जब आपने उसको आजाद कर दिया तो बाहर से गुसल करके वापस आकर कहता है, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद, आपने मुझे आजाद नहीं कैद कर लिया है, अब मैं हमेशा से आपके लिए कैदी हूँ, बताएं मैं इस्लाम के लिए क्या करूँ। आपकी चीज ऐसी हो कि किसी को फोर्स ना करना पड़े, वो खुद को फोर्स करे। मार्केटिंग की बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या है? वर्ड बाय माउथ। कोई ये तो नहीं कहते कि तुम्हारे कितने कस्टमर है, वो कहते हैं रिपीटेड कस्टमर कितने हैं। किसने एक बार आपसे चीज खरीद ली और वो फिर किसी और जगह नहीं जाता? असल क्वालिटी मोमिन की ये है, आप और मैं अल्लाह के साथ अहद की रस्सी में खुद को बांधते हैं, और जो अल्लाह से बनते हैं, भी ये नहीं हो सकता कि बंदों के साथ वो अनप्रिडिक्टेबल हो। यहाँ जो पाबंदी है ना, इसको भी समझिए। पता क्या होता है, आम हालात में लोग अल्लाह के हुक्मों पे अमल करते हैं, गड़बड़ कहाँ होती है जहाँ गैर मामूली हालात होते हैं। हम आमतौर पे घर में अच्छे मूड में होते हैं, गैर मामूली कैफियत कब होती है? जब मियाँ को कहा था दूध लेकर आए और वो भूल गए, मियाँ साहब ने 5 बजे आना था और वो बेचारे फंस गए ट्रैफिक में, 6 बजे घर। ये गैर मामूली हालात में ना आप एक और ही औरत बन जाती है, फिर आपका कुछ और ही है। वो अल्लाह से डरने वाला अल्लाह से बेखौफ हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब इश्तियाल आता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू को सामने रखिए। ऐसे वक्त में अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अल्लाह ये चाहता है आपसे। जो शख्स हक पर हो उसका साथ देना, और जो ना हक है उसका साथ ना देना, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और इसी मुश्किल काम को करने वालों को बेहतरीन इंजाम की खबर है। फिर आपने देखा कि हुर्रिमत के साथ आए 3 में एक लंबी लिस्ट आपको दी गई जानवरों के कुछ गोश्त खाने या ना खाने की, तो जरा सब सूरत मायदा के शुरू में जो बात छेड़ी थी, आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। आप देखिए कि आज की दुनिया के 2 बड़े मसाइल हैं। गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के माथे पे एक तिलक लगा दिया, और उनका ख्याल क्या है, नंबर एक है कि इस्लाम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, औरत और मर्द के साथ पाबंदियाँ नहीं, और है वो है। इसका जवाब सूरत निसा में पढ़ा है, अरिजाल कवामून अल निसा वाली आयत के साथ, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। असल में तुम नहीं समझते, एक होता है अदल और एक होता है इंसाफ। फर्क क्या दोनों में? इंसाफ के 5 किलो का डब्बा बाप को दे दें, 5 किलो का बच्चे को दे दें जो 5 साल का है, निस हो गया, इंसाफ हो गया आपका। आपकी अदालतें अदल से हैं, अदलिया लिखिए, इंसाफिया नहीं है। अदल क्या है? छोटा बच्चा बस 1 किलो पकड़ सकता है, तो 10 किलो में से 1 किलो का डब्बा उसको दे दो, 9 किलो बाप को दे दो, वो इससे भी ज्यादा पकड़ सकता है, इसको अदल कहते हैं। मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आज अगर किसी के दिमाग में यह है कि उस मुसलमान औरतों पे बड़ा जुल्म करता है, पहले तो मैं यकीन ही नहीं करती इस बात पे कि औरतें डिप्रेसिव हैं, ओप्रेसिव हैं, मुसलमान औरतें दबी हुई हैं। जरा शीशे में जाकर देखिएगा कि आप में से कौन दबा हुआ है। औरतों को मार पड़ती है, वो जो पिछले पारे में आया था फदरीबू ना, पूरे पारे में वो 2 लफ्ज हाईलाइट करके, देखो इस्लाम क्या कह रहा है। अल्लाह के बंदो, वो मिसाल पीछे दे चुकी हूँ कल, अब छोड़ दीजिए। आप में से किस औरत को मार पड़ती है, किस औरत पे जुल्म है? आपकी खाला, फुप्पो, मामी, चची, जो भी फीमेल रिश्ते हैं, आप जरा सोचिए कि कोई दबी भी है? बेचारे मर्द ही नहीं मजलूम होते। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना, वो सवारियां नहीं, गाड़ियां नहीं, वो उनके साथ खड़े शेफर भी हैं कि बेगम आप भी जाओ ना, अब बस करो, बच्चा मोटा घुपला सा पकड़ा हुआ है, आप अपने बाजार में घूम रही हैं, और वो मियाँ साहब कहते हैं कि बस मैं और नहीं आगे चलूंगा। इतने में आपको बुटीक का जोड़ा दिखा, आप तो बेचैन होके गुजर गई आगे। वो जोड़ा लेने देने में जब बिल देने की बारी, अरे मियाँ तो वहां खड़े होंगे, तो मुड़के देखा तो अल्लाह का बंदा फिर मधु बना हुआ मट्टी का आपके पीछे है। सुभान अल्लाह, सखर अल्लाह, अल्लाह ने मुसक्कर कर दिया उस बंदे को आपके लिए, अब क्या करें? किसी पे जुल्म हुआ देखा आपने आज तक? वो कोई मासी होगी जिसका मियाँ चरसिया होगा, भंगी होगा। तो पहला इल्जाम जो इस्लाम के माथे पे लगा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा में पूरा हुआ। दूसरा जो बहुत बड़ा, आज और आप पर मैं बस में बैठ के ये बात कर रहे हैं, मैं पिछले 22-23 साल से ये जुमला सुनती आई हूँ, हलाल ज़बीहा खाए नहीं, वो खाए नहीं, ये हलाल मीट वो मीट। किसी ने कहा ये हलाल नहीं है ना तो ये हराम भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आई ये क्या जुमला होता है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मतलब टर्की है और फलां है, मिसाल है कि मुर्गी है लेकिन पिग नहीं है, यानी हमारे यहाँ पिग को हराम समझते हैं। ये पूरी आयत अल्लाह ने आपको इस शरीयत पे सर उठा के फख्र करो कि जो जानवर तुम्हें खाने से रोका है, गोश्त तो गंदगी है, गटर की पाइपें हैं ना, ये आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, सारा दिन जिस्म में जो सारे डिटेरिएशन होती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें जो सेल्स मर जाते हैं उनकी लाशों को ले लेके सारा दिन ब्लड फिरता है और एंड पे जाकर उसको फिर जाया किया जाता है। आप ब्लड वाला गोश्त खाएंगे तो आपके अंदर वो नहीं आएगा। पिक के गोश्त से अल्लाह को कुछ चिड़ थोड़ी थी, अल्लाह नहीं बनाया पिक को। तो कहने का मतलब यह है कि शरीयत पे लगे हुए इल्ज़ाम का ये सूरत, अब पूरी सूरत मायदा इस एक इल्ज़ाम का जवाब आपको देगी, क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते, ये हलाल है वो हराम है। फिर इसी में आपने देखा है कि शादी की बात आ गई, आप कहेंगे अभी तो आप कह रही हैं कि इस्लाम अदल की बात करता है, तो औरतों की शादी गैर मुस्लिम मर्दों से नहीं हो सकती, मुस्लिम मर्दों की शादी हो सकती है गैर औरत से, क्यों? क्योंकि औरत जल्दी मुतासिर हो जाती है। एक औरत की शादी अगर एक गैर मुस्लिम से होगी, एक तो वो दबा लेगा क्योंकि मर्द अपनी फितरत के साथ से डोमिनेंट है, और दूसरी बात है कि औरत बड़ी जल्दी बेची जाती है, सबसे पहले अपना नाम ही उतारती है अब्बा जी का, और मिसिस फुला, बेगम फुला है, शरीका हयात फुला, औरत दब जाती है ना, अल्लाह ने कहा कि नहीं। और दूसरी बात है कि वो जल्दी से गैर मुस्लिम के रंग में रंगे, अल्लाह ने मर्द को इजाजत दे दी कि तुम कर लो नॉन मुस्लिम औरत से शादी, क्यों? नंबर एक, मर्द डोमिनेंट होता है, वो बीवी को बाय हुक और बाय क्रुक माइल कर लेगा, और दूसरी बात है कि उसकी बीवी अगर गैर मुस्लिम होगी तो मर्द अगर एक अच्छा शोहर बनेगा तो वो उसका जिम्मेदार है, यानी दूध का दूध पानी का पानी। अल्लाह ने ये बात कह के अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम कह कर ये बता दिया कि तुम्हें मैंने अधूरा दीन नहीं दिया, दीन हर दौर में पक्का था। ये लोग कहते हैं ना पहला दीन पूरा नहीं था फिर इस्लाम में पक्का आ गया पूरा आ गया, गलत है। अधूरी चीज देकर उस्ताद अगर टेस्ट पूरे में से ले ले, पढ़ाए आधा और टेस्ट दे तो अच्छा तो नहीं होगा। अल्लाह किसी को अधूरी हिदायत देकर बाद में कहे क्या पूरा अमल करो, तो ये मुमकिन नहीं। तो बहरहाल ये एक मजमून है जो काबिले गौर भी है, आज खास तौर पे आपके बच्चों के बहुत सारे सवालों का जवाब है सूरत मायदा में, किसी भी तरह से उनको इस चीज के साथ जोड़कर देख लीजिए। अल्लाह ताला ने इसमें सारी बातें बताकर आपको मुझे बस इस बात पे मुतमईन कर दिया, हलाल और हराम का कानून कितनी भी तफसील से क्यों ना बता दें, बिल आखिर इंसान का अपना इरादा ही है जो इसको किसी चीज से रोकता है या रोक नहीं ले जाता है। जितना आपके अंदर तकवा होगा, आप अपने ऊपर खुद चौकीदार होंगे, अपने गार्डमैन होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उतना आप इंशाल्लाह इन चीजों के ऊपर मानेंगे नहीं। आज कितनी तेजी से गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हमारी मुसलमान बच्चियों की शादियां हो रही हैं, किधर गई है सूरत मायदा की आयत जो अभी पढ़ के बैठे हैं, किधर गया वो इस्लाम मर्द का जो गैर मुस्लिम बीवी के साथ रहता है लेकिन उसकी नमाज की फिक्र नहीं, उसको उसके दीन की फिक्र नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे बच्चे इन सारी चीज़ों से दूर हैं। दुआ कीजिए कि हम अपने बच्चों को कम से कम एक बार तो कुरान का तर्जमा पूरा सिखा कर दुनिया से जाएं, और मोहलत मांगिए कि अल्लाह हमने बहुत देर कर दी, अब आप हमारे लिए इस चीज़ को आसान कर दीजिए। फिर इसी तरह से आयत नंबर 2 सूरत मायदा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर क्या पैगाम दिया, शायर अल्लाह की बेहुरमती इस्लाम की बेहुरमती है, इस्लाम आपको इससे बचाता है। और मायदा 5 का पैगाम क्या है, अहले किताब का खाना और पाक दामन औरतें हलाल हैं। आपके मेरे लिए फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर दीन का मजाक नहीं उड़ाना, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी है, और खिलाफ शरीयत काम में दूसरों का साथ नहीं देना। ये जो आज एंटरटेनमेंट के नाम पे बेहुदा किस्म के जोक्स और हंसी मजाक वाली चीज़ें, और फिर वही कहूँगी कि वो वीडियोस और मीम्स में आ गई, ये भी किसी भी कौम के बिगड़े हुए मिजाज की अलामत है, इससे बचने की ज़रूरत है। आगे जी रुकू नंबर 2, 6 to 11, ईमान वालों की रहनुमाई अल्लाह की तरफ से और पुकार है मोहब्बत भरी आपके नाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग्सिलू। अब यहाँ से आप वुजू के, गुसल के और नमाज के मुख्तलिफ तरीके देखेंगे। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुसल कर लो, हाँ अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई हाजते ज़रूरी से फारिग होकर आया हो यानी वॉशरूम यूज़ किया हो, या तुम औरतों से मिले हो, किनाया है शौहर बीवी के ताल्लुक की तरफ, और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, इसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो, और अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, बल्कि इसका इरादा तुम्हें पाक करने का है और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। क्या खूबसूरत तरीके से तरीका सिखाया वजू का। तुम पर अल्लाह ताला की जो नेमतें नाजिल हुई हैं इन्हें याद रखो, और इसकी सेहत को भी जिसका तुमसे वादा हुआ है जबकि तुमने कहा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, समेना व अताना, हमने सुना और माना, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला है। और फिर एक पुकार आए 8 में आपके नाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना लिल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ, किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफ अदल पर इमादा ना करें। इस सूरत में जहां लफ्ज अदल आए ना, इसको हाईलाइट करें। जो शुरू में आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो यही है कि इस्लाम अदल की बात करता है, बराबरी की नहीं। अदल किया करो जो परहेजकारी के ज्यादा करीब है, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अल्लाह का वादा है, जो ईमान लाए और नेक काम करें इनके लिए वसी मगफरत और बहुत बड़ा अजर है और सवाब है, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारे काम को झुटलाया वो जहन्नमी है। 3री बार पुकारे की रुकू में आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने जो एहसान तुम पर किया है इसे याद करो, जबकि एक कौम ने तुम पर दस्त दराजी करना चाही यानी तुम पर हाथ उठाया तो अल्लाह ताला ने इनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया, और अल्लाह ताला से डरते रहो, और मोमिनों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। क्या पता चला ईमान से मुतल्लिक 4 आयतें, आप फील करें मतनी सूरतों में बार बार आमनु का लफ्ज आपको मिल रहा है, आगे कुछ सूरतें आएंगी जिसमें एक भी बार नहीं होगा क्योंकि वो मक्की सूरतें होंगी। तो 4 मकामात में से पहला माईदा 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, वुजू और तयम्मुम के अहकामात खुद अल्लाह ने आपको सिखाए पुकार के। आप जानते हैं कि फर्स्ट हैंड किसी से सीखना या किसी के साथ कोई मामला रखना ये ज्यादा फायदा देता है। फिर इसके बाद दुश्मन के साथ भी इंसाफ करना है, ये सूरत माईदा की आयत 8 का मैसेज है। माईदा 9 से क्या पता चला, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति लहुम मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम, फेथ इन एक्शन। पूरा कुरान हाईलाइट करते जाइए, कभी ये नहीं आएगा कि इन्नल्लज़ीना आमनू लहुमुल जन्ना लहुमुल मग़फिरा लहुमुल अजरु नज़ीम, बल्कि आमनू वामिलुस्सालिहात। तो क्या इसमें फेथ इन एक्शन का पॉइंट निकला कि चूंकि नेक अमाल करने वालों से अल्लाह ताला ने अजरे अजीम का वादा किया है, तो हमने इंशाल्लाह इसकी कोशिश करनी है। और माईदा 11, पुरअमन जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, आप और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। जंग नहीं लगी हुई, कोरोना नहीं है, वार जोन में नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ों में अगर अपने आप को रखेंगे तो आप अपने आप को हर चीज़ से बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि मैं सबसे अच्छे हाल में हूँ। आप देखिए, यही रमज़ान आने वाला हो या रमज़ान आया हो और हमारे पास जंग हो, भूख हो, प्यास हो, वो कोरोना वाले साल याद कीजिए। नमाजें मस्जिद में नहीं है, घरों से बैठकर कुरान सुन रहे थे, हम शायद अभी भी यही चाहते हैं कि हमें घरों से ही लोग सारा कुछ दे दें, वर्चुअल नमाजें भी पढ़ लेंगे, कल मस्जिदों से भी अपने आप को फारिग करेंगे। चूंकि यहाँ नमाज की बात हुई तो थोड़ी सी बात मुझे नमाज पे करने दीजिए। आप देखिए, दिन में 5 नमाजें, 5 दफा मुंह धोने या 5 दफा साफ होने का नाम है, क्योंकि नमाज एक रब्बानी चश्मा है जिसमें नहा कर हम गुनाहों से पाक हो जाते हैं। नमाज का मकसद गुनाहों से, बुराइयों से पाक करना है, ये मजमून हम 21वें पारे की पहली आयत में भी पढ़ेंगे। चूंकि बुराइयों से पाक करना है ना, तो वुजू इसकी एक बैरूनी तैयारी है। इंसान जब नमाज का इरादा करता है ना, तो पहले वो पानी के पास जाता है। पानी बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान के लिए हर किस्म की गंदगी को धोने का बेहतरीन जरिया है। तो नमाज भी आपको मुझे बुरे जज्बात, बुरे ख्यालात, बुरी सोचों से पाक करते हैं। गुस्सा आया हो, जाके वुजू करिए, डिप्रेशन है जाके वुजू कीजिए, वसवसे आ रहे हैं वुजू कीजिए। और आप जब वुजू करते हैं ना, तो वो एक बड़ी प्यारी सी हदीस आप जो नमाज नबी में भी सुनते हैं उसकी एक अमली तस्वीर बन जाते हैं। वुजू करते हुए सबसे पहले हम हाथों पे पानी डालते हैं, گویا کہ عمل کی زبان سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ان ہاتھوں کو برائیوں سے بچانا اور اس کے ذریعے جو مجھ سے برائیاں ہوئی ہیں ان کو دھو کر صاف کر دے. پھر بندہ منہ میں پانی ڈالتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ زبان حال سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا میں نے اپنے منہ میں سے جو غلط باتیں نکالی ہوں وہی لا یحب اللہ الجاہرہ کا ٹاپک سمجھیے, یا میں نے اپنے منہ میں کوئی غلط لقمہ ڈال دیا, کوئی حرام کا لقمہ ڈال دیا, یا بھی جس کا ذکر آئے تین میں ہوا, کوئی ایسے ہی غیر ذبیحہ کھا لیا, کوئی زبان سے کسی کو تانا دے دیا, اور اللہ میں نے آنکھوں سے جو بری چیز دیکھ لی ان سب کو مجھ سے دور کر دے. پھر اس کے بعد انسان ہاتھوں سے سر کے اوپر مسح کرتا ہے, گویا کہ وہ اپنے وجود سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے ذہن نے میرے دماغ نے جو بری باتیں سوچی غلط پلانس کیے اس کے اثرات بھی میرے سے دھو دے, میرے دل دماغ کو کھلا کر دے. اور پھر آخر میں ہوتے ہوتے بندہ جب پاؤں دھونے پہ آتا ہے نا تو اپنا یہ عمل اللہ کے سامنے ایک عرضی کے طور پر ایک اپلیکیشن کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے پاؤں سے برائی کی گرد کو دھو دے اور اس کو ایسا بنا دے کہ سچائی اور انصاف کے سوا میں کسی اور رستے پہ نہ چلوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا وضو انسان کے لیے دعا کی ایک عملی صورت ہے کہ اللہ تو مجھے غلطیوں سے پلٹنے والا بنا اور مجھ کو برائیوں سے پاک رہ دے. عام حالات میں وضو کر لیا, احساس شروع ہو گیا. اب جو بات تھی تیمم کی, جنابت کی حالت ایک غیر معمولی حالت ہے, پورا جسم دھونا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو اگر چھوٹا غسل ہے تو غسل بڑا وضو ہے, دونوں ایک ہی چیز کی دو مختلف کیفیات ہیں. اللہ نے مجبوریوں کے وقت بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالا, یہ اس شریعت کا حصہ عدل والا وہ جملہ آج آپ زبان سے نکالتے ہوئے یہاں سے اٹھیں گے کہ اسلام کی شریعت, اسلام کی سزائیں, اسلام کے احکامات عدل بیسڈ ہیں. اور نماز, وضو اور تیمم یہ اسی کے, یہ نہیں کہا کہ مر رہے ہو تو مرو لیکن تمہیں غسل ہی کرنا ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ آپ کا میرا رب آپ سے مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ جب بندہ عہد کر لیتا ہے اس کے ساتھ ایمان کا تو اللہ کہتا ہے تیرے سارے کاموں کا میں وارث ہوں, میں تجھے بیمار نہیں ہونے دوں گا, میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا, شرط یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ سے جڑے ہوں. اور جب آپ اللہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی خوبصورت وعدے بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو ہو کے غسل ہو کے تیمم صرف ظاہری نہیں شرعی طہارت کا ذریعہ بنتی ہیں. دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کی ضمانت اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے. اسلام زبان سے عہد کا نام ہے اور عمل سے اطاعت اس عہد کا اظہار ہے. فیتھ ان ایکشن, عدل و انصاف کے معاملے میں جانبداری سے بچنا ہے, یعنی فیورٹزم نہیں کرنا, اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو جاننا ہے اور عمل کرنا ہے, اور اپنی تمام کوششیں کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. آگے ہے جی رکوع نمبر 3 آیت نمبر 12-19, اہل کتاب کی خباستیں, یعنی لوگوں نے حسد کیا. آگے سے آپ کو دوبارہ تھوڑا سا انداز بنی اسرائیل کی یہ والی جو ٹون ہے اس میں ملے گا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. وہی جو شروع سے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا اسی حصے کو ذرا ذہن میں لائیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے. ان کی ایک نئی خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی رہے گی, ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں, بس تو انہیں معاف کرتا رہے اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہیے, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا, انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی, تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی, اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا. क्या पता चला कि जब कौमें अल्लाह की दी हुई नसीहत को भूल जाती हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में बुग़्ज़ और अदावत डाल देता है। अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका जो तुम्हारे सामने किताब अल्लाह की बकसरत ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। ये आयत यहाँ अटलांटा जॉर्जिया में नहीं, मदीना की उस गली में और मस्जिद नबी के उस अहाते में खुद को ले जाकर सोचिए कि जहां ये आयतें उतरी थी और बाहर मदीना के यहूद फिर रहे थे। डायरेक्ट हिट पड़ती थी उनके दिल दिमाग पर कि ये क्या हुआ। लेकिन वही बात है कि हसद और बुगत की वजह से बंदे को अपनी गलती नजर नहीं आती, इसीलिए फरमाया कि ये वो चीज है, कौन सी किताब, जिसके जरिए से अल्लाह इन्हें जो रजाए रब के दर पे हो सलामती की राह बताता है और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ इनकी राह बरी करता है। दिल से दुआ करिए अल्लाह इस कुरान के नूर को हमारी जिंदगी में भर दे, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। वो इस कुरान से ऐसे चले जाएं, अंधेरी कब्रें होंगी क्या उनकी? उधर कुरान के ये नूर, कुरान की आयतें, कुरान के ये टॉर्च नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला हमें आगे उस कौम का हाल सुना रहे हैं, पहले यहूद की बात थी अब नसारा की। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। नऊज़ुबिल्लाह, क्रिश्चियंस का वो फिरका जो जीसस गॉड का दावा करता है उसका तस्करा है। आप इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम और इनकी वालदा और वह जमीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो? आसमान और जमीन दोनों के दरमियान का कुल मालिक अल्लाह ताला ही है, यानी उसकी मलकियत में है। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और इसके दोस्त हैं, खुशफहमियां। आप कह दीजिए फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बायस अल्लाह सजा क्यों देता है? नहीं बल्कि तुम भी इसकी मखलूक में से एक इंसान हो, वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब करता है। जमीनों आसमान और इनके दरमियान की हर चीज अल्लाह की मलकियत में है और इसी की तरफ लौटना है। जरा महसूस कीजिए अल्लाह की तरफ लौटने को, क्या वो वक्त होगा, कैसे वो हालात होंगे? अहले किताब, बिल यकीन हमारा रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद के एक वक्फे के बाद आ पहुंचा है जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है, ताकि तुम्हारी ये बात न रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला ही नहीं आया। अब तो यकीनन खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला पहुंचा और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कितनी पुकारें पड़ी, आप जरा सोचिए वो लोग जो नबी के सामने मौजूद थे और उनको ये आयतें मिल रही थी तो वो क्या रिएक्शन शो करते होंगे? मिसाल से समझिए ना कि जैसे आजकल दौरे कुरान हो रहा है, आप अपनी दोस्तों को बुलाते हैं, फिर किसी को मैसेज करते हैं, फिर फ्लायर आता है। एक से दो बार एक ही फ्लायर मिल जाए तो लोग कहते हैं क्या मुसीबत है, लोगों ने तो एक ही काम बना, पता लग गया हमें, अच्छा आना होगा तो आ जाएंगे। कानों पर आवाज नहीं पड़ रही होती, वो हुज्जत तमाम हो रही होती है। एक बार, दो बार, तीन बार, देखिए पांच नमाजें इकट्ठी पढ़ ली जाती, क्या हर्ज था? सुबह उठे तो सारी इकट्ठी पढ़ लो या सोने से पहले पढ़ लो, या चलो सारे दिन में जब फारिग थे उस वक्त जाके पांचों पढ़ो, नहीं, पांच नमाजें पांच हुज्जतें हैं। आपको मुझे भी अपने ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्या हम खुशफहमियों की जन्नत में तो नहीं है? यहूद का ये गुमान के हम नस्ली जन्नती हैं, हम खानदाने अंबिया कराम हैं, तो अल्लाह ने बता दिया कि जन्नत किसी को अमल से मिलती है ना कि उसके किसी नस्ली ताल्लुक को। फिर आप देख रहे हैं कि बार बार अहद की बात हो रही थी ना, तो एक दो जुमले लिख लीजिए कि जो हम सिराते मुस्तकीम की बात करते हैं ना, वो असल में वो बुनियादी इल्म की बातें जो दीन में हैं, तौहीद और उसके सारे मामलात, वो है जन्नत। वो रस्तों पे चलते जाएंगे जन्नत में पहुंच जाएंगे। आज आपको मुझे अकायद सीखने हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख के, उसके बाद इबादत पे जाएंगे, इबादत के बाद मामला बेहतर करेंगे और सारी जिंदगी अखलाक अच्छा करेंगे। यही है इस्लाम ए टू जी, इसी शहर इसी बल्कि इदारे से ही हमने किया था आज से कुछ साल पहले। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ये चाहता है, सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बात खत्म हो जाएगी। होता क्या है कि जब अल्लाह की तरफ से भेजे हुए दीन की हामिल कौमों में बिगाड़ आता है तो वो हाईवे पे जाने की बजाय साइड की छोटी छोटी गलियों में चले जाते हैं, खुद साख्ता बातें, फिरोई बातें, जुजवी बातें, दीन का तस्वर बदल जाता है। आप देखिए आपका एयरपोर्ट नया बना, कितना अच्छा बना, कुछ सालों बाद जाकर देखे दीवारों पर शेर लिखे हुए हैं, दिल तोड़ बना के अंदर तीर डाले हुए हैं, क्योंकि लोगों ने खराब कर दिया, टूटियां टूट गई, क्या हो गया, क्योंकि हम बिगाड़ते हैं। जैसे नई चीज खूबसूरत लगती है, बाद में पुरानी हो जाती है ना, क्योंकि रेनोवेशन नहीं। दीन के नाम पर बेसिक चीजों को छोड़कर फिकी बातों पे जाना, ये दीन का हुलिया बिगाड़ना है। आप गवाही दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 पारा हम कर रहे हैं, 7th डे है हमारे दौरे कुरान का, आज भी तक आपने इस जुबान से कोई फिकी बात सुनी, किसी के खिलाफ सुनी, हम ये हैं तुम वो हो, सुनी? एक ही दर्द नहीं है कि लोगों पहले अल्लाह के साथ तो ताल्लुक ठीक करो। लेकिन शैतान कई दफा ये धोखे दे देता है लोगों को कि नहीं, ये तो तुम्हारी फिक बदल देंगे, तुम्हारी सोच बदल देंगे। तो यहूद एक फिकी नाम है, एक फिरोही नाम है, एक गिरोही नाम है, एक फिरका वाराना नाम है। अल्लाह ताला आपको मुझे ये बता रहा है कि जिस वक्त मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आएगा ना, तो उस वक्त तुम्हें अपनी नेकियों की फिक्र होगी, तुम उस वक्त किसी नाम से नहीं पहचाने जाओगे, कब्र में भी मन रब्बू का, मन रसूलू का, मा दीनू का की बात आएगी। तो आपके लिए मेरे लिए इस पूरे रुकू में से फेथ इन एक्शन क्या है कि अपने अहदों को पूरा करना है, रसूलों की तालीमात पे अमल करना है, और सबसे बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना है, और दीन के बुनियादी हुक्मों को छोड़कर छोटी छोटी इख्तलाफी बातों में नहीं पड़ना, क्योंकि हर बंदा ही अपने आप को जब हक पे कहेगा तो फिर उसके ऊपर किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता, हर एक को अपना ही अच्छा लगेगा। और मैं ये सोच रही थी कि मदीना के लोगों को, थोड़े से लोग थे, अल्लाह बार बार ये दावतें दे रहे हैं, अगर आज के दौर में मुसलमानों के पास अल्लाह के नबी आ जाए, आज अगर कुरान के नजूल का सिलसिला मौकूफ ना हुआ होता और चल रहा था कुरान, तो हम मुसलमानों को रोज डांट नहीं पड़नी थी। ये तुम क्या सुन्नी शिया वहाबी और अहली और फलां बने बैठे हो, तुम पहले मुसलमान तो पूरे बनो, इस्लाम तो तुम्हारा पूरा ही नहीं है। क्योंकि अहले किताब ने अपने दीन में दो बहुत बड़ी गलतियां की थी, एक तो क्या है कि अपनी तालीमात जो थी तौरात की उसको बदल दिया, तहरीफ कर दी, तावीलें कर दी, ऐसी तब्दीलियां की कि सस्ती निजात के कुछ नुस्खे बना लिए, पैगंबर की जरूरत ही नहीं रहती, और दूसरा ये था कि दीन के नाम पे कुछ पाबंदियां लगा ली। ये आयतें बिल्कुल उन सारी पाबंदियों को खोलती जा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए कुरान नेमत। और मैं ये कहकर आगे चली जाऊंगी कि कल जैसे कुरान उनके लिए एक पुकार थी कि छोड़ो अपनी ये फरोई बातें और बेकार बातें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने आ गए, इनको मान लो, बिल्कुल आज आपको मुझे भी, खास कर उन लोगों को जिन्होंने 25, 30, 35, 40 साल का होने पर भी कुरान नहीं पढ़ा, उनको भी कुरान जी कह रहा है। चलो बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हो ना, एक दफा कुरान तो पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी का मिशन क्या था।